और इस प्रकाश के शरीर में मैं आत्मा चमकता सितारा प्रकाश पुंज हीरे के समान भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा हूं। हम अनुभव करेंगे, अनुभव करें कि मेरा सारा शरीर सफेद प्रकाश लाइट का है, दोनों हाथ लाइट के, दोनों पैर मुख धड़ लाइट ही लाइट, और इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच बैठी हूं। मैं आत्मा हीरा प्रकाश पुंज अपने प्रकाश के शरीर में विराजमान, ये शरीर मुझे कर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मिला है। वास्तव में मैं तो एक प्रकाश पुंज शक्ति पुंज आत्मा हूं। आत्मा राजा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा है और मुझसे लाइट ही लाइट प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। तो सभी इसी एक संकल्प में बैठे कि मैं आत्मा बिंदु प्रकाश पुंज अपनी लाइट के शरीर में बैठी हूं। सारा सेशन इसी अनुभूति में बैठकर सुने कि मैं प्रकाश पुंज आत्मा अपने प्रकाश के शरीर में बैठी हूं और इन कानों द्वारा सुन रही हूं। महान फिलोसोफर शेक्सपियर ने कहा है कि दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स प्लेइंग अवर पार्ट इन अ डिफरेंट वे। अर्थात ये संसार एक रंगमंच है और इससे हम सब आत्माएं एक्टर के रूप में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब ये संसार रंगमंच है तो वास्तव में मुझ आत्मा का घर कौन सा है, या कहते हैं कि जहां से आए हैं वहां ही सबको जाना है, दुनिया एक मुसाफिर खाना है। तो कहां से आए कहां जाना, तो चलिए आज हम देखेंगे कि वास्तव में मुझ आत्मा का घर कौन सा है, कहां से आए हैं, ये रंगमंच है और घर कौन सा है। तो देखिए ये है वर्ल्ड ड्रामा स्टेज, रंगमंच, ग्लोब, सृष्टि रंगमंच, जहां पर हम सब आत्माएं जो सितारा है, बिल्कुल प्रकाश का पुंज, वो इस हड्डी मांस के शरीर के आधार से अपना पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ पर सुख भी होता है, दुख भी होता है, कर्म फल इनका चक्र चलता है, दिन भी होता है रात भी होती है। तो इसको हम कहते हैं साकार मनुष्य लोक, रंगमंच, जहां पर हम सब आत्माएं इस हड्डी मांस के शरीर का आधार लेकर अपना अपना पार्ट बचा रहे हैं। इसके ऊपर जाए तो आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, ये गैलेक्सी, और उसके ऊपर जाए, इसको बोलते हैं साकार मनुष्य लोग, ठीक है ना? और उसके ऊपर जाए तो एक दूसरी दुनिया, जहां पर ये हड्डी मांस का शरीर नहीं है, प्रकाश का शरीर है, या ऐसा कह लें कि वहां फरिश्ते रहते हैं, एंजल्स, और वहां ऐसी आवाज नहीं होती। ज्यादा डिटेल में नहीं हम जाते, पर उस दुनिया को कहते हैं सूक्ष्म लोक। ये साकार मनुष्य लोक, वो सूक्ष्म लोक। अब और उससे ऊपर जाएं तो एक तीसरी दुनिया, जहां पर चारों ओर केवल सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है, जहां पर चारों ओर केवल शांति ही शांति है, कंप्लीट साइलेंस, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं। वहां पर मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में चमकते सितारे के रूप में रहती थी, और वही मुझ आत्मा का घर है, यह दिखाया है। देखिए छोटे छोटे सितारे यहां रहते, तो उस घर को कहते हैं, देखिए क्या क्या नाम हमारे घर के, वहां पर न सुख होता, न दुख, न दिन, न रात, न कर्म, न फल, केवल शांति ही शांति। और उस घर को कहते हैं शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। देखिए आपके घर के कितने नाम हैं। उस घर को कहते हैं परम धाम। परम माना सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई नहीं, उस घर को कहते हैं मुक्ति धाम, अर्थात जहां पर मैं आत्मा इस शरीर के बंधन से, कर्म के बंधन से मुक्त थी। उस घर को कहते हैं निर्वाण धाम। निर्वाण माना वाणी से परे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई वाणी आवाज नहीं थी। तो आप सब कहां से आए हैं? कौन सा नाम सबसे अच्छा लगा? कौन सा अच्छा लगा? क्या कहेंगे? परम धाम। तो मैं आत्मा उसी परम धाम की, शांति के धाम की, शांति के देश की रहने वाली हूं। और वहां से भगवान ने मुझे भेजा और इस शरीर का आधार दिया कि जाओ आत्मा, इस शरीर का आधार लेकर इस रंग मंच पे अपना पाठ बजाओ। तो वास्तव में हूं मैं चमकता सितारा आत्मा, शरीर से अलग, और शरीर केवल पाठ बजाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मिला है। पर क्या हुआ कि इस रंग मंच पर पाठ बजाते बजाते हम स्वयं को शरीर ही समझने लगे, भूल ही गए कि मैं तो आत्मा हूं, और अपना घर भी भूल गए कि हम उस परम धाम से आए हैं। इस रंग मंच को ही अपना घर समझने लगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि कोई ड्रामा में आपको एक साल के लिए राजा का रोल बजाने को मिले, और राजा का रोल प्ले करने के लिए आपको राजा की ड्रेस पहना दें, और रहने के लिए अच्छे अच्छे महल दे दें, पर उस एक साल में आप राजा का रोल बजाते बजाते स्वयं को राजा ही समझने लगे, और जो महल मिले पार्ट बजाने के लिए उनको अपना घर समझने लगे। तो एक साल बाद जब आपका राजा का रोल पूरा होगा तो वो महल आपसे वापस लेंगे। पर मान लो आप अपने को राजा समझने लगे तो जब वो पार्ट पूरा होगा तो आपको क्या होगा? दुख होगा ना, क्योंकि आपसे वो ड्रेस छीनेंगे, फिर आपको याद दिलाएंगे अरे तुम राजा नहीं थे, तुम तो ये थे। तो यही तो हुआ है, हम आत्माएं प्रकाश पुंज, चमकता सितारा, शरीर केवल रोल बजाने के लिए मिला, पर रोल बजाते बजाते हम इसमें इतना अटैच हो गए कि हर कदम पे हमें दुख तनाव मिलने लगा। पर चलिए आज हम चर्चा करें कि इस रंग मंच पर अपना पार्ट बजाते हुए हम कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखें कि ये वर्ल्ड ड्रामा हमें सुख दे। सब चाहते ना कि हमें सुख मिले, तो हम चर्चा करेंगे। पर पहले आप बताएं कौन सी बात ऐसी स्मृति में रखें कि वर्ल्ड ड्रामा का सुख मिले, बताइए। आप तो शेयर कीजिए, दो चार दिन हो गए आते आते। खुशी मेरा खजाना। अच्छा, और और क्या याद रखें? हाँ जी, हाँ हाथ उठा के बताइए। हाँ, और हाँ थोड़ा जोर से बोले, पीछे से बोले, आवाज नहीं आई। हाँ अच्छा, हजार भुजाओं वाला भगवान साथ है। चलो ये सबके अंदर छप गया होगा आप तो। अच्छा, और सबसे पहले याद रखें कि मैं इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर एक कलाकार हूँ, एक्टर हूँ। वास्तव में रहने वाला परम धाम का और इस रंगमंच पर इस शरीर का आधार लेकर अपना एक्ट पार्ट बजा रहा हूँ। और ये स्वीकार करें कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक बहुत अच्छा कलाकार हूँ। देखिए डिप्रेशन क्यों आता है कि जब हम सोचते ना, पता नहीं क्यों आ गया इस संसार में, क्या मेरी आवश्यकता, पर नहीं, यू आर ऑल्सो नीडेड हियर, आपकी भी संसार को आवश्यकता है। और क्यों डिप्रेशन आता है जब सोचते ना, अरे हमने तो इतना सब कुछ किया पर किसी ने दो बोल हमें मीठे नहीं बोले। तो हम आपको आज एक मेथड बताते कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया और किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, तो आप एक काम करिए, ये जो आपका राइट हैंड है ना, सभी इसको धीरे धीरे उठाओ, एकदम धीरे धीरे, अपने सीधे हाथ को एकदम धीरे देखो, ऐसे उठाइए सभी, ले जाओ पीछे तक और अपनी पीठ थपथपाओ सभी, शाबाश। कि मान लीजिए बहुत अच्छा काम किया, किसी ने आपको रिवार्ड नहीं दिया, तो खुद ही खुद की पीठ थपथपाओ कि शाबाश, आई हैव डन इट वेरी वेल, वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो इससे क्या होगा, अच्छा लगा ना पीठ थपथपाने में, और इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है ना, जॉइंट्स के पेन भी नहीं होंगे और आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा। तो जब भी अच्छा काम करो, खुद ही खुद को रिवार्ड दे लो कि शाबाश, आई हैव डन इट वेरी वेल, वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो रिवार्ड योर सेल्फ। तो हम चर्चा कर रहे थे कि स्वीकार करें कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक महान कलाकार हूँ। कलाकार ही नहीं, एक्टर ही नहीं, पर महान आत्मा, महान कलाकार। अब कई सोचेंगे कि बेन जी मैं महान आत्मा हूं, ऐसा सोचने से अभिमान आ जाएगा, पर ये अभिमान नहीं है। ये देखिए मेडिटेशन में तीन बातें होती है। अच्छा उसके पहले ये बताएं कि कौन कौन स्वीकार करते हैं कि मैं महान आत्मा हूं, हाथ उठाएं, मालूम पड़ेगा अभी। अच्छा उठाओ उठाओ, ऐसा नहीं कि एक ने उठाया, तो दिल से कौन स्वीकार करता है। अब बहुत ने नीचे कर लिए। क्यों महान, कि जैसे मेरा पिता परमात्मा महान, वो ऊंचे से ऊंचा भगवान, तो मैं उस परम पिता की ऊंचे से ऊंचे भगवान की संतान, कैसी आत्मा, महान आत्मा। हाँ आप स्वीकार करते। देखिए तीन बात होती है मेडिटेशन में। एक होता है अभिमान, ईगो, तो ये अच्छा नहीं होता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अभिमान ठीक नहीं। दूसरा होता है अपमान, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये भी अच्छा नहीं, क्योंकि जो अपमान में रहता है उसको डिप्रेशन आ जाता है। तो मेडिटेशन बताता ना अभिमान में रहो ना अपमान, इन दोनों के बीच का स्वाभिमान भी नहीं, पर स्वाभिमान से भी ऊंची चीज स्वमान, सेल्फ एस्टीम। स्वाभिमान तो फिर भी हल्का है, पर स्वाभिमान से ऊंचा स्वमान। मेडिटेशन बताता कि स्वमान अर्थात कि जो मैं आत्मा हूं उसमें मैं स्थित हो जाऊं, जैसे हूं मैं ऊंचे से ऊंचे भगवान का बच्चा, तो ये अभिमान नहीं है, ये क्या है? स्वमान है। जैसे कोई कहे हम भारतीय हैं, भारत देश के रहने वाले, तो अभिमान नहीं है, ये क्या है? हमारा स्वमान है। तो स्वमान अर्थात जो मैं आत्मा हूं उसमें मैं स्थित हो जाऊं, तो मैं महान कलाकार हूं, महान आत्मा हूं, ये अभिमान नहीं, ये स्वमान है। कि जैसे मेरा पिता परमात्मा महान, मैं उसका बच्चा भी महान। और क्यों महान बताइए? क्यों महान? कि प्रभु के वरदानों का हाथ किसके सिर पर है? आपके सिर पर। और क्यों महान? कि हजार भुजाओं वाला भगवान किसके साथ है? आपके साथ। तो आप स्वीकार करते हैं महान है। अब आप हमें बताएं, एक मिनट हम आपको देंगे कि अगर हम सारा दिन इस स्मृति में रहते हैं कि मैं महान कलाकार हूँ, महान आत्मा, तो बताइए उसकी क्या क्या फीलिंग्स होती हैं? क्योंकि आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन यही है। कैसे इसको करना, क्या इसका बेनिफिट, ये हम आपको बताएंगे। पर क्या है आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन? मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक महान कलाकार हूँ, महान आत्मा हूँ। तो क्यों महान है ये तो आपको बताया, पर अभी एक मिनट हम आपको साइलेंस देते और आप चिंतन करके हमें बताइए कि अगर हम इस स्मृति में रहते तो क्या क्या फीलिंग्स हमारे मन में होती है। एक मिनट साइलेंस, आंखें बंद करें और फिर हमें बताएं। सभी इसी संकल्प में बैठे कि मैं महान आत्मा हूँ, क्या अनुभूति होती है? अब हाथ ऊंचा करके जवाब देते जाएं। हाँ जी बताइए, एक मिनट हाथ ऊंचा करके। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, परिस्थितियों का असर नहीं होता, बहुत अच्छा। और हाँ जी आप बता रहे थे अटैचमेंट खत्म, अच्छा। और हाँ जी अच्छा, और हाँ और बताएं। हाँ जी आत्मविश्वास, बहुत बढ़िया आंसर। और टेंशन दूर हो गया, चलो ये भी बहुत अच्छा है। चलो और हाँ बोलिए। खुशी मिलती है, बहुत बढ़िया, कि मैं महान हूँ इसलिए। अगर आप इस स्पिरिचुअल इंजेक्शन को लिख लिख कर करेंगे, जैसे कल लिखा था ना, तो आप पाएंगे कि आपका चेहरा शाम तक टमाटर जैसा खुशी के मारे लाल हो जाएगा। तो अगर इसकी अनुभूति करना चाहते हैं तो आप लिख कर करिएगा। अच्छा और बताएं, और क्या होता है? हाँ किसने क्या क्या फील किया? महान समझने से हमारे मन में सबके प्रति कैसी भावना हो जाएगी? शुभ भावना। महान वो जिसके मन में सबके प्रति शुभ भावनाएं हों। महान वो जिसका हर संकल्प महान, जिसका हर बोल महान। तो महान समझेंगे तो मानो कोई नेगेटिव विचार आएगा तो एकदम आपको याद आएगा कि नहीं तुम महान आत्मा हो, तुम्हें नेगेटिव विचार नहीं करना। महान समझने से जीवन का बड़े से बड़ा विघ्न भी, बड़े से बड़ी परिस्थिति भी छोटी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मानो आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो हेलीकॉप्टर में आप ऊंचे हैं, आपकी स्थिति ऊंची है, तो कितना भी बड़ा शहर आता है कैसा दिखता ऊंचाई से? छोटा टापू। तो जब आप महान स्थिति में हैं, तो कैसी भी बड़ी परिस्थिति आएगी पर महान स्थिति के आगे सारी परिस्थितियां अपने आप छोटी हो जाएगी। तो आप सारा दिन आज इस स्मृति में रहना कि मैं महान आत्मा हूँ। जब इस स्मृति में रहेंगे तो खुशी भी मिलेगी, ऑटोमेटिक भावनाएं बदल जाएंगी। महान हूँ तो ये रहेगा कि मुझे मीठे बोल ही बोलना है, किसी को भी दुख नहीं देना। कल एक भाई हमसे मिले, बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी, आपको बताते। बोले बहन जी, आपने कहा कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे ही मीठे बोल बोलना है, मुझे ही सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, तो बोले मैं ही मरूं क्या? ऐसा हमने पूछा। तो हम आपको उसका जवाब देते कि यदि आप सचमुच समझते कि मैं महान आत्मा हूँ, तो महान आत्मा को परिवर्तन तो करना ही होगा। महान हूँ तो मीठे बोल तो बोलने ही होंगे। तो अगर सारा दिन इस स्थिति में रहते हैं, तो अपने आप भावनाएं, बोल, संकल्प, कर्म, दृष्टिकोण सब बदल जाएगा। नेक्स्ट, इस वर्ल्ड ड्रामा का सुख लेने के लिए ये तो स्वीकार किया कि मैं महान कलाकार, पर दूसरी बात कि आप ये भी स्वीकार करें कि मैं तो हुई महान आत्मा, पर दूसरे भी जो सब हैं, ये भी सब आत्माएं हैं, सब उस परमात्मा की ही संतान हैं। आपके अंदर में वृत्ति बदल जाए, भावना बदल जाए, जिसको हम कहते हैं ब्रदरहुड की फीलिंग, वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना अंदर में हो कि ये भी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, दूसरे भी जो सब हैं वो हमारे हैं, कहते ना आपस में भाई भाई। तो जब ये आपके अंदर फीलिंग होगी, आपकी भावना बदल जाएगी, तो आप देखेंगे कि भावना बदलते ही आपका संसार बदल जाएगा। तो आज कम से कम 10 लोगों को आप ये अभ्यास करें कि किस दृष्टि से देखें कि ये भी आत्मा है, हमारा भाई है और उस परमात्मा की ही संतान है और इसका भी कल्याण है। बताए ना, सर्वे भवन्तु सुखिना। कम से कम 10 लोगों को आज आप इसी दृष्टि से मिलेगा और फिर आप देखिएगा कि आपकी भावनाएं कितना चमत्कारिक माहौल क्रिएट कर सकती हैं। फीलिंग आप देखिएगा, आपको पहले भी बताया कि किसी, अब ये बहुत बड़ी बात, निष्काम भाव कर्म करना मनुष्य का धर्म है, अच्छे कर्म महान व्यक्ति की पहचान होती है। पर जितना हो सके आप अपने कर्म निष्काम भाव से करें, बड़े से बड़ी जिम्मेवारी भी यदि आपने कामना रहित होकर की, तो कभी भी आपके मन में भारीपन या तनाव नहीं आएगा। कामनाएं रखना ठीक है, होनी भी चाहिए, पर अनावश्यक कामनाएं हमारे जीवन की खुशी को गुम कर देती है। कामना ही तनाव का बीज है, जहां आपने कामना रखी वहां तनाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि कोई भी मनुष्य दूसरों की कामनाओं को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आप देखिए कि हमारा जीवन कदम कदम पर कामनाओं से भरपूर होकर चलता है। कदम कदम पर हम कामना रखते हैं, कहीं सहयोग की कामना, कहीं मेरा उपकार माना जाए ये कामना। हम सोचते हैं ना कि मैंने इसके लिए इतना किया, अब ये भी मुझे समय पर मदद करे, और मानो नहीं उसने की तो तनाव हो गया। या सोचते हैं कि मैंने इसको इतनी मदद दी, कम से कम ये मेरी महिमा तो कर दे। तो कामना रखी और वो कामना पूरी नहीं हुई तो डिस्टर्ब। तो देखिए, हम आपको निश्चिंत रहने का एक फॉर्मूला बताते। आज आप देखिए कि पहले के जमाने में सुनते थे कि जब 60-65 साल की एज होती थी तब मुश्किल से कई हार्ट अटैक एक दो को सुनने को मिलता था, और आज यंग लाइफ में 18 साल 20 साल में हार्ट अटैक। क्यों? क्या कारण उसका? ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ, अत्यधिक महत्वाकांक्षी। तो देखिए, हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि यदि आपकी कामनाओं का लेवल 100% है, अर्थात किसी भी कर्म को करने के बाद कामना 100% है, तो आपकी खुशी 0%। और यदि खुशी को 100% करना है तो कामनाएं 0 करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि एक निष्काम व्यक्ति ही सच्चे सुख और खुशी की अनुभूति कर सकता है। आप एक दिन ही प्रयोग करके देख लीजिए कि सारा दिन हम अपने सारे कर्म निष्काम भाव से करेंगे, और रात तक आप देखिए आप कितने हल्के। निष्काम भाव अर्थात दूसरों को सुख देंगे पर बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, कहते हैं ना। तो कर्मण्येवाधि का रस्ते कि कर्म करो, मेहनत करो और फल प्रभु को अर्पण कर दो, जो भी मिला उसके बाद हार जीत निंदा स्तुति। तो निष्काम भाव, और इतना ही नहीं, आप अपने कर्म को खेल बना लें, खेलो आप कर्म से। अगर ये कला किसी ने सीख ली कर्म को खेल बनाने की, तो भी निश्चिंत, कोई तनाव नहीं। देखिए, लोग कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है। तो हम कहते कि कर्म को पूजा बनाना, साधना बनाना, ये तो एक बहुत ऊंची मंजिल है, पर आप कम से कम अपने कर्म को खेल तो बना लें। और खेल समझने से क्या होता है, हमेशा आपको खुशी रहेगी, उमंग उत्साह बना रहेगा, क्योंकि देखिए खेल में कितनी भी थकान हो, कितनी भी मेहनत हो, पर व्यक्ति थकता नहीं है, उसको खुशी मिलती, आनंद आता है खेलने में। तो देखिए, हमें भी रोज वही कर्म करना है, रोज उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। तो जब रोज वही कर्म करना, तो क्यों ना हम अपने कर्म को खेल बना दें। तो खेल समझने से, खेलो आप कर्म से, तो खेल समझने से जीवन के उतराव चढ़ाव आपकी खुशी को गुम नहीं करेंगे। ये बहुत ऊंची स्थिति है कि सब खेल चल रहा है, खेल में हार भी होती है जीत भी होती है, पर वैसे भी आप देखिए कि आपके साथ आप अकेले नहीं खेल रहे हैं इस खेल में। कल से कौन आपकी टीम में जुड़ गया? कौन जुड़ गया? भगवान। आप मानो आपकी क्रिकेट टीम है या कोई टीम है और उसमें अच्छा शक्तिशाली प्लेयर आ जाए तो आप क्या सोचेंगे, अपनी तो जीत जाए निश्चित है। तो आपकी टीम में भी अब कौन आ गया? सर्वशक्तिवान। तो उसके साथ आप खेल रहे हैं तो विजय तो आपकी निश्चित हुई पड़ी है। उसके साथ खेल रहे हैं तो हर खेल का दृश्य कल्याणकारी है, आनंद से भरपूर। तो खेल समझकर खेलो कि सब खेल चल रहा है। तो कर्म को खेल बनाना ये तो मुख्य बात, पर इस रंग मंच पे जो भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, इनको भी आप खेल समझ लो, क्योंकि ये परिस्थितियां हमें परिपक्व बनाने के लिए आती हैं। हमेशा याद रखो कि परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है, परिपक्व बनाने के लिए आई है। जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े सागर को क्रॉस कर रहे हैं और आप जहाज से जा रहे हैं, स्टीमर से, और आपको पार करके उस पार जाना है दूसरा किनारे पर। तो उस पार जाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, आपके जहाज को, स्टीमर को उस बीच भंवर में से क्रॉस करना ही पड़ेगा, सागर के बीच में से जाना ही पड़ेगा। अब मानो कोई बीच भंवर में पहुंच के घबरा जाए तो क्या वो अपने लक्ष्य तक, उस किनारे तक पहुंच सकता है? पहुंच सकता है? नहीं। तो ऐसे जीवन का लक्ष्य भी बहुत महान है, तो उस महान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बीच भंवर में से क्रॉस करना ही होगा। तो आप परीक्षाओं को देखकर घबराओ मत, पर ये लक्ष्य रखो कि जब सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान साथ है तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे की पहुंचे। या मान लो दूसरा उदाहरण कि आप एक बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, यात्रा ऊंची है, मंजिल ऊंची। अब यात्रा के बीच में मानो कुछ नजारे भी आते हैं ना, साइड सीन आते हैं, तो कोई व्यक्ति मानो उस साइड सीन में ही उलझ जाए कि वाह ये तो बहुत अच्छा, वही अटक जाए, तो क्या वो अपनी यात्रा के लक्ष्य तक पहुंचेगा? पहुंचेगा नहीं। तो ऐसे ही जीवन भी एक यात्रा है और इसमें जो बीच बीच में परिस्थितियां आती है ये तो एक साइड सीन है। तो साइड सीन समझकर इनको पार करना है। ये हमेशा लक्ष्य रखो कि ये साइड सीन है परीक्षाएं, और मुझे इस साइड सीन में उलझना नहीं है, अटकना नहीं है, क्योंकि राही का काम क्या होता है कि साइड सीन को पार कर आगे बढ़ना। तो ये परीक्षाएं, परिस्थितियां मुझे परिपक्व बनाने के लिए आई है, मुझे घबराना नहीं है, साइड सीन समझकर इसको पार करना है। और लक्ष्य रखें कि जब सर्वशक्तिवान साथ है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचे कि पहुंचे। और कभी भी अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारना। बताया था कि सब कुछ खो जाने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोना। हिम्मत ही जीवन का श्वास है। हिम्मत खो दी माना सब कुछ चला गया। और आप इस एक बात का अनुभव करके देखो जीवन में कि एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद परमात्मा की, करके देखो। एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद परमात्मा की। देखिए हिम्मत के बल पर लोग क्या से क्या कर देते हैं। हाँ, इस पर आपने नेपोलियन की बात सुनी होगी, सभी जानते नेपोलियन बोनापार्ट को, तो कितना हिम्मत थी उसमें। बताते हैं कि जब वो अपनी सेना को लेकर निकला एक अभियान पर, तो रास्ते में आल्प्स नामक पर्वत आ गया। तो जब वो उस पर्वत को क्रॉस कर रहा था तो नीचे झोपड़ी में एक वृद्धा थी, तो उस वृद्धा ने नेपोलियन को उस पर्वत पर नहीं चढ़ने की सलाह दी, उसने कहा कि आज तक इस पर्वत को कोई पार नहीं कर पाया, तुम ऐसा दुस्साहस नहीं करना। तो देखो नेपोलियन ने उसको क्या जवाब दिया। उसने कहा कि माँ, मैं ऐसे कर्म करना चाहता हूँ जिन्हें आज तक किसी ने नहीं किया हो। बोले अगर मैं मर भी गया तो मेरा साहस और शौर्य जीवित रहेगा, चाहे कितने भी विघ्न आए, बाधा आए, मैं इस पर्वत को क्रॉस करके ही रहूंगा। और देखते ही देखते वो सारी उसकी सेना उस पर्वत को क्रॉस कर गई। तो क्या क्यों सुनाया ये कि हिम्मत के बल पर असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो आप भी जीवन में हिम्मत नहीं हारना, और एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद परमात्मा की करके देखिए। और आप इस खेल का नाम याद रखो, अगर ये जो खेल चल रहा है इसका नाम ही याद रख लिया तो भी कभी स्थिति डगमग नहीं होगी। क्या नाम है इस इतने बड़े खेल का, बेहद के नाटक का? इस खेल का नाम है वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा, वैरायटी खेल। ये सब गहरी गहरी बात है। वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा अर्थात जिसके अंदर हर एक्टर का रोल आपको वैरायटी मिलेगा, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा। वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा अर्थात इसमें हर सीन वैरायटी, हर सीन अलग, एक सीन दूसरे से नहीं। वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले लोग आपको मिलेंगे, एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलेगा। तो ये अंदर में ज्ञान रहे, जैसे मान लो आपको कोई पहले ही बता दे कि भाई अभी जो तुम ड्रामा देखने जा रहे हो वो हॉरर शो है, तो आप पहले मेंटल प्रिपेयर हो जाएंगे कि भाई इसमें भय के पिक्चर्स आएंगे। पर आप फिर भी कह रहे मुझे तो डर लग रहा है, तो भाई आपको कहेंगे ना पहले ही बता दिया था कि ये तो हॉरर शो है। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि बच्चे ये वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा, एक सीन दूसरे से नहीं मिलेगा। तो आप इस वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा की वैरायटी को एंजॉय करो। ये क्वेश्चन नहीं उठाओ ये सीन क्यों आया, ऐसा नहीं होना था, क्योंकि क्यों आते ही मन में हलचल होती है। नहीं, वैरायटी चल रहा है तो वैरायटी को एंजॉय करना है। और वैसे भी आप देखिए कि सबका पार्ट अगर एक जैसे ही हो जाए ड्रामा में, सब हंसने लगे या सब रो ही रहे हैं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, वैरायटी अच्छी लगती है ना। तो व्यक्ति क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करने के बजाय एक दूसरे के पार्ट में दोष देखने लगते हैं, इसलिए तनाव होता है। क्या सोचते ये व्यक्ति ऐसा क्यों, इसको ऐसा नहीं करना था। पर देखिए, दोष देखा दूसरों का और उसी क्षण खुशी गुम हुई हमारी। उस व्यक्ति का कुछ नहीं होता, वो तो आगे बढ़ रहा, अपना काम करे जा रहा है। दोष देखा दूसरों का और स्थिति बिगड़ी हमारी। तो आप ये अंदर में ज्ञान रखें कि वैरायटी खेल चल रहा है, सबके वैरायटी पार्ट है, इसलिए मुझे सबके पार्ट का आनंद लेना है। जैसे मानो एक फिल्म आप देख रहे हो तो उसमें हीरो के पार्ट का भी आप आनंद लेते हो, कोई विलेन होता है फाइटिंग करता है तो भी हम क्या बोलते, वाह कितना अच्छा पार्ट बजाए करते ना। तो आप भी सबके पार्ट का आनंद लो, आज करके देखना। सबके पार्ट का आनंद लेना माना कि ऐसा नहीं कोई क्रोध कर रहा है तो तुम कहो वाह भाई वाह तेरा पार्ट तो बहुत अच्छा, नहीं तो और ही आपको नाराज हो जाएगा। पर अंदर में ज्ञान रहे कि ये भी एक एक्टर है और ये भी निर्दोष है, इसको जो पार्ट मिला है वो बजा रहा है, पर मैं महान आत्मा हूँ, महान कलाकार हूँ, तो मेरा पार्ट क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये साक्षी होकर आप सबके पार्ट को देखो। तो आज आप सबके पार्ट का आनंद लेना, ठीक है, तो क्या अंदर में ज्ञान रहे, ये नहीं कि ऐसा क्यों, इसको ऐसा नहीं करना था, हम क्वेश्चन करने लगते हैं, या ये सीन क्यों हुआ, नहीं, ये वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है और इसका हर दृश्य कल्याणकारी है और वैरायटी है, इसलिए मुझे वैरायटी स्वभाव संस्कार वैरायटी सीन का आनंद लेना है, क्यों क्या नहीं उठाना, नो क्वेश्चन, ठीक है, तब आपको आनंद रहेगा। और आप बताइए कि मानो कोई वर्ल्ड ड्रामा में आपको पार्ट मिले, या कोई ड्रामा में, छोटे मोटे ड्रामा में पार्ट मिल जाए, तो आपका क्या रहेगा प्रयास कि हम ऐसा पार्ट बजाएं कि देखने वाली ऑडियंस भी कहे वंस मोर वंस मोर। तो इस वर्ल्ड ड्रामा में भी भगवान ने हमें पार्ट दिया, तो हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए कि जो देखने वाली ऑडियंस है, ऑडियंस माना जो लोग हमारे साथ रहते हैं, जिनके साथ हम कर्म करते हैं, वो क्या कहे कि वंस मोर वंस मोर, एक बार फिर एक बार फिर। तो कब कहेगी देखने वाली ऑडियंस वंस मोर वंस मोर? जब हम क्रोध करेंगे तो बोलेगी वंस मोर? नहीं, जब हम अपने बोल द्वारा दूसरों को सुख देंगे, जब हम सबके प्रति शुभ भावनाएं रखेंगे, तो ऑडियंस कहेगी वंस मोर वंस मोर। ठीक है, तो अब हम आपको इस फर्स्ट चैप्टर की, जो फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था एडवांस कोर्स का, उसकी दो तीन मुख्य बातें और बताते। स्वयं की खोज चल रहा था ना, क्योंकि आज ये फर्स्ट लेसन पूरा होगा और कल इस शिविर का सेकंड लेसन गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा अनुभूति हम स्टार्ट करेंगे। पर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि कल हम आपका परमात्मा से मंगल मिलन मनवाएंगे, तो कल का सेशन पूरे 11 दिन के शिविर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। कल शिविर के अंदर आनंद उत्सव मनाया जाएगा, वो क्या चीज है वो कल आप अनुभव कीजिएगा। पर ये आपको बता दें कि कितने भी आपके अपॉइंटमेंट्स हो, आप उनको आगे पीछे एडजस्ट करके कल का सेशन कोई मिस नहीं करना। कल हम सेकंड लेसन गॉड रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। और दूसरी एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वैसे तो आप सब मेजॉरिटी भाई बहन ठीक समय पर आ ही जाते हैं, पर ये 5-7 दिन के लिए जरा आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को निद्रा देवी को प्रोग्राम दे दें कि थोड़ा जल्दी उठा दें। तो आप लक्ष्य रखें कि 6 में 10 की देर पर ही यहाँ आ जाएं। शुरू से आप अटेंड करेंगे तो उसका आपको फुल लाभ मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा 5-7 दिन अलार्म भर दें सब कॉन्शियस माइंड के अंदर। तो कल का सेशन गॉड रियलाइजेशन आनंद उत्सव, इसलिए लक्ष्य रखें कि कल 5:45 पे ही यहाँ आ जाए। ठीक है, अब हम इस फर्स्ट चैप्टर की, इसको जो मुख्य बातें बताई वो भी बता देते शॉर्ट में, और 2-3 इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं उस पर और चर्चा करते। अभी तक स्वयं की खोज में हमने क्या बताया कि मैं कौन, इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक प्रकाश पुंज शक्तिशाली आत्मा। आज आपको आत्मा के घर की पहचान दी कि हम सब कहां के रहने वाले हैं, उस परम धाम के, शांति धाम के। आप देखिए कि कोई बच्चा घर से भटक गया हो और उसको घर की पहचान दे दे तो उसको अंदर में खुशी होती ना कि ठिकाना मिल गया। तो हम सब आत्माएं भी यहाँ पार्ट बजाते बजाते अपना घर ही भूल गए थे। तो आज आपको आपके घर का परिचय मिला कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, उस परम धाम के, शांति धाम के, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, जो ऊंचे से ऊंचा घर है, घर की भी खुशी होती है व्यक्ति को। हाँ कहते हैं ना हम भारत देश के रहने वाले, गर्व होता है। तो हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है? उस शांति के देश की, जहाँ है शांति। रहने वाले हम परम धाम के हैं, जिससे ऊंचा कोई स्थान ही नहीं। तो आपको घर का परिचय दिया। तीसरी बात, हम आपको अपने स्वधर्म का परिचय देंगे कि देखिए शरीर के अपने अलग अलग धर्म होते हैं, धर्म की भी अपनी खुशी होती है। तो शरीर के अलग अलग धर्म बने, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्या, पर ये तो शरीर के हैं। पर फर्स्ट लेसन में ही आपको बता दिया कि शरीर तो आप है ही नहीं, है ही आत्मा। तो आत्मा का भी एक धर्म है, और वो आत्मा का स्वधर्म है शांत, शांति। क्या स्वधर्म है? शांति। तो आप देखिए हर चीज का एक स्वभाव होता है। जैसे पानी का भी अपना स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता। तो मैं आत्मा हूं और आत्मा का स्वभाव है, स्वधर्म है शांति। आप देखिए कि आज व्यक्ति मन की शांति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। इम्पोर्टेंट थीम चल रहा है अभी। क्या क्या करते लोग, शांति मिल जाए तो सोचते हैं, इतना धन आ जाए तो मन में शांति हो, या सोचते हैं कि ये साधन आ जाए तब शांति मिले, या कई सोचते हैं कर्म छोड़कर चला जाऊं तो शांति मिले। पर याद रखें कि शांति कर्म छोड़ने में नहीं है, शांति साधनों में नहीं है, धन संपत्ति में नहीं है, पर शांति तो मुझ आत्मा का धर्म ही है, शांति तो मुझ आत्मा का स्वभाव है, शांति तो मुझ आत्मा का घर है। तो देखिए आप कितनी सहज बात। हम आपको ऐसी चार बात लिखवाएंगे शांति प्राप्त करने के लिए। अगर चार बात आप ऐसी याद रखें या उसका अनुभव करें तो आपको हमेशा मन शांत रहेगा। तो आप टाइटल डाल लें कॉपीज में, शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात। एक एक पॉइंट हम लिखाते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाएं। शांति प्राप्त करने के लिए पहली बात, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाएं। सत्य स्वरूप माना मैं आत्मा, लिखे आप सभी, मैं आत्मा बिंदु हूं, चमकता सितारा, प्रकाश पुंज। बस अनुभव करें कि मैं हुई चमकता सितारा, आत्मा बिंदु, शरीर से अलग। तो अब आप समझे इससे कैसे शांति मिलेगी। हाँ, आपको पहले ही बताया कि जैसे हर चीज का स्वभाव होता है, आप पानी के पास जाएंगे, सागर के पास, और 10 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आपको नेचुरल शीतलता का अनुभव होने लगेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हे सागर मुझे शीतलता का अनुभव करा, क्योंकि सागर का स्वभाव ही क्या है, शीतलता। सूर्य के पास खड़े होंगे तो 5-7 मिनट बाद आपको ही अपने अंदर एक शक्ति महसूस होगी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव ही है तेज। तो ऐसे ही जब आप इस संकल्प में स्थित हो जाएंगे कि मैं आत्मा बिंदु हूं, अशरीरी आत्मा, चमकता सितारा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे शांति मिले, पर नेचुरल आपको शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही क्या है, शांत। समझा? तो ये सबसे पहली बात। दूसरा, शांति धाम मेरा घर है। शांति अनुभूति के लिए दूसरा पॉइंट, शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। अब इससे कैसे शांति मिलेगी? आपको पहले ही बता दिया कि घर की भी खुशी होती है, तो हमारा तो घर ही कौन सा है जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। पीस पैलेस, साइलेंस वर्ल्ड। तीसरा, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। घर भी शांति धाम और धर्म भी मेरा शांति। तो धर्म की भी खुशी होती लोगों को कि मैं फलाने धर्म का हूं, तो आत्मा का धर्म तो क्या है? शांति। चौथा, मेरा पिता परमात्मा शांति का दाता। किसके बच्चे हम सब? शांति का सागर, शांति के दाता के। तो पिता भी कौन मेरा? शांति का दाता, सागर। तो शांति के सागर के बच्चे होने के नाते शांति मुझ आत्मा का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो, जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उस पर बच्चों का हक होता है। तो ये आप अनुभव करें, लिख लें भले ही, कि पिता परमात्मा भी शांति का सागर, शांति मुझ आत्मा का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भटकना नहीं, मांगना नहीं है, ही मेरा वर्षा, शांति मेरा वर्षा है। वर्षा कहते हैं, समझते हैं, सभी वारिस होता है ना, जैसे हकदार। तो ये चार बातें, पहला, मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, अशरीरी रहने वाले भी कहां के? शांति धाम, स्वधर्म भी शांत और पिता भी शांति का दाता। तो शांति मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब भी आपको शांति की अनुभूति करनी हो तो इन चार बातों की स्मृति में आप आ जाइएगा। अब हम आपको बताते, ये तो बताया कि मैं आत्मा हूं, पर कैसी आत्मा हूं ये भी बताते। कई पूछते हैं, बहन जी आप रोज कहते हैं कि बहुत से मेरे अंदर विशेषता है, गुण है, पर कौन सा गुण है? हमको तो अभी तक दर्शन ही नहीं हो रहे। तो मुख्य गुण हर आत्मा के अंदर समाये हैं। वो कौन कौन से मुख्य गुण हैं वो हम आपको बताते, और उस गुण से शरीर का स्वास्थ्य। देखिए, हर आत्मा के अंदर मुख्य गुण हैं। पहला, कि सब आत्माएं शांत स्वरूप हैं, शांति। पहले गुण बताते, फिर एक एक गुण का शरीर पर क्या इफेक्ट है वो बताएंगे। दूसरा, ज्ञान स्वरूप आत्मा। दूसरा गुण, ज्ञान स्वरूप आत्मा। तीसरा, प्रेम स्वरूप आत्मा। आत्मा तो हूं, पर कैसी आत्मा? शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, हुई शक्ति स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप, प्योर, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये सात गुण हैं, विशेषताएं हैं, जो हर आत्मा के अंदर है। परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। कौन कौन से गुण हम बताते फिर रिपीट करेंगे। शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो ये सारे गुण मुझ आत्मा में समाये हुए हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। और जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के द्वारा ये गुण हमारे भीतर के जागृत होने लगते हैं। मान लीजिए अभी शांति आप में 10-20% होगी, धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे तो शांति का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। मानो किसी में अभी आनंद बहुत कम है, मेडिटेशन करने से वो आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी। और देखिए आप जिन व्यक्तियों में ये गुण की कमी होती है तो फिर वो उसको बाहर खोजता है। देखते हैं ना, आज व्यक्ति क्यों व्यसन लेते हैं, क्यों स्मोकिंग सिगरेट आदि, बोलते आनंद आता है। अब क्या आनंद है वो उनसे पूछो, ठीक है ना। तो कहने का भाव मतलब उसमें आनंद की कमी है इसलिए वो बाहर खोज रहा है, पर उससे कोई आनंद मिलता नहीं है, ये उसका टेम्पररी सोचना। या व्यक्ति मन में शांति नहीं है तो सोचता है कहीं हॉलीडे पे चला जाऊं, माना उसके अंदर शांति की कमी इसलिए बाहर खोज रहा है। सुख की कमी है तो सोचता है होटल जाऊं, क्लब जाऊं, कहां जाऊं। कहने का भाव कि जब ये गुण अंदर में नहीं है तो व्यक्ति बाहर खोजने लगता है, और मेडिटेशन इसको अंदर से बाहर ले आता है। और जब ये गुण मेडिटेशन के द्वारा हम अनुभव करते हैं तो देखिए इससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य कैसे बैलेंस होता है। हम कहते हैं ना भाई मेडिटेशन द्वारा शरीर का स्वास्थ्य बैलेंस में, तो कैसे होता, एक एक गुण का प्रभाव क्या। देखिए कहते हैं कि जिनमें प्रेम स्वरूप का गुण अच्छा होता है, कहते ना स्वयं से भी प्यार करो दूसरों से भी करो, तो उनको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, हार्ट अटैक नहीं आता, जो स्वयं को प्यार करता दूसरों को करता। कहते कि जिनमें प्रेम का गुण अच्छा होता है तो उनका लीवर भी ठीक हो जाता है। ऐसी रिसर्च हुई है, बहुत सी रिसर्चेस, कि खराब लीवर भी अच्छे हो गए। तो प्रेम स्वरूप का गुण हार्ट और लीवर इन दोनों को ठीक रखता है, और ये गुण आते मेडिटेशन से। जिनमें शांति का गुण अच्छा होता है तो उससे उनके लंग्स ठीक काम करते, फेफड़े, कहते ना शांति से सांस लो, तो शांति का गुण अच्छा है तो लंग्स अच्छे होते हैं। इन गुणों की कमी के कारण ही बीमारियां होती हैं। जिनमें शक्ति का गुण अच्छा है, शक्ति माना शरीर की शक्ति नहीं, कोई सोचे तो हट्टा खट्टा है, आत्मा की शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, तो उसकी बोन्स मसल्स हड्डियां मजबूत होती है। शक्ति का गुण अच्छा है तो बोन्स और मसल्स हड्डियां भी अच्छी होती है। जिसमें ज्ञान का गुण अच्छा है, ज्ञान बाहरी नॉलेज नहीं, आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान का अच्छा है गुण, तो उसका ब्रेन भी अच्छा होता है। जिसके अंदर पवित्रता माना सच्चाई सफाई है अंदर में, तो उसका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। जिसमें आनंद का अच्छा होता है, जो आनंद में रहता है, मौज में रहता है, खुशी में रहता है, तो कहते आनंद से हार्मोन सिस्टम बैलेंस में आ जाता है। सेकेंड डे आप लोगों को बताया था हार्मोन सिस्टम के बारे में, हार्मोन सिस्टम, जेनेटिक सिस्टम सब ठीक काम करता है। और जिनमें इन गुणों की कमी होती है तो उनको ही बीमारियां होती है। फिर मानो किसी में आनंद का गुण नहीं है, बहुत टेंशन में रहता है, खिंचा खिंचा, तो फिर उसके हार्मोन्स में गड़बड़ होती है, ठीक है। माना ये सारे गुण एक एक हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं, और ये गुण आते हैं मेडिटेशन करने से। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करो, और उसके लिए भी कहते हैं कि मेडिटेशन का सबसे अच्छा समय भी सुबह होता है। क्यों कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सभी लोग कहते हैं ना कि सुबह उठेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जल्दी उठने से शरीर के अंदर अच्छी अच्छी केमिकल्स बनते हैं, पॉजिटिव केमिकल्स। वो केमिकल्स जब बनते शरीर में तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं मॉर्निंग में जल्दी उठो। जल्दी माना जो सबसे अच्छा पीरियड मेडिटेशन का मानते हैं वो सुबह 4 से 5। कल एक भाई ने हमसे पूछा था कि बहन जी जो आप स्पिरिचुअल इंजेक्शन देते हो सबसे अच्छा इफेक्ट कब रहेगा उस दवाई का, तो 4 से 5 अगर सुबह आप करेंगे जल्दी उठ के, तो उस समय क्योंकि बॉडी के अंदर भी कई ऐसे हार्मोन केमिकल्स बनते हैं, इस पर हम बाद में और डिटेल चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात, आज हम आपको मेडिटेशन के द्वारा ब्रह्मांड की सैर, अपने घर शांति धाम की सैर कराएंगे, पर उसके पहले एक बात पूछ लें कि आप सभी को होमवर्क दिया था 1000 भुजाओं वाला भगवान साथ है, आप सभी लिख कर लाए? भाई जो लिख कर लाया तो हाथ उठाए। अच्छा, मेजोरिटी है, तो हमारी यहाँ बहन खड़ी रहेंगी, लास्ट में आप जब जाएं तो वो पेपर सपने यहाँ देकर जाइएगा, और कोई किसी कारणवश नहीं लिख पाए हो तो आज का दिन और दे देते, ठीक है, एक दिन ग्रेस पीरियड। किसी को और लिखना है इच्छा हो रही हम और ज्यादा लिखे, कल एक भाई आए बोले बहन जी मैंने 101 बार तो लिख लिया अभी और लिखना है, मैंने कहा लिखो बैठकर, ठीक है, तो और किसी को लिखना है तो आज का दिन और देते हैं आपको। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये आप सभी ध्यान से सुने, ये कॉमन सभी के लिए है, मेजोरिटी अलग से जब मिलने आए तो किसी ने कहा बहन जी बहुत ज्यादा बोझ है, बहुत ज्यादा परेशान, नींद नहीं आती। तो हम आपको एक कॉमन उसकी विधि बता रहे हैं सभी को, कि किसी को इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, कहते हैं ना आजकल हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, तो जो जो स्पिरिचुअल इंजेक्शन आपको दे रहे हैं उस एक एक स्पिरिचुअल इंजेक्शन को लिख लिख कर आप अभ्यास करो। जैसे पहला दिन का था कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आप बैठ जाओ एक दिन और 50 बार उसको लिखो स्पिरिचुअल इंजेक्शन को, पर ऐसा नहीं 50 लिखना है तो गिनते गए 1 2 3, नहीं, एक बार लिखा और उसका 2 मिनट अनुभव किया, फिर दूसरी बार लिखा, फिर अनुभव। तो एक एक स्पिरिचुअल इंजेक्शन को, जो रोज के स्पिरिचुअल इंजेक्शन है उसको लिख लिख कर करेंगे, तो विद इन 1 or 2 डे आपको इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा, इंस्टेंट। मानो किसी में डिप्रेशन है बहुत ज्यादा और वो चाहता है बिल्कुल खुशी मुझे मिल जाए, तो आज लिख कर करो कि मैं इस महान कलाकार हूं और उसकी खुशी आप देखो शाम तक। क्विक रिलीफ चाहिए, किसी को क्विक रिलीफ चाहिए तो दूसरा स्पिरिचुअल इंजेक्शन, मैं भगवान का बच्चा हूँ, खुशी मेरा खजाना, मुझे खुश रहना ही है, उसको आप लिखो, क्योंकि लिखने से वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर समाती जाएगी। तो ये हम जनरल बात सभी के लिए कह रहे हैं कि 1000 भुजा वाला तो हमको लिखकर आप देना, वो तो सभी को हमने दिया था, पर अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो रोज के स्पिरिचुअल इंजेक्शन को लिख लिख कर आप अनुभव करो, ठीक है, तो आपको क्विक रिजल्ट उसका मिलेगा। एक बार लिखा उसका अनुभव, ज्यादा नहीं तो 50 बार ही लिखो एक बार एक स्पिरिचुअल इंजेक्शन को। अच्छा, आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन महान आत्मा हूँ, इसको कितनी बार करेंगे, कितना डोज आज आप बता दीजिए, जितना आप बताएंगे उतना रखेंगे, कितनी बार, 108। अच्छा चलो, आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन हर आधे घंटे में 1 मिनट के लिए आपको करना है, अर्थात हर आधे घंटे बाद आपको याद आ जाए कि मैं तो महान आत्मा हूँ, महान कलाकार हूँ। क्यों महान ये बता दिया कि जैसे पिता परमात्मा महान, मैं उसका बच्चा भी महान। क्यों महान कि प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर। क्यों महान कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हर आधे घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए आप बैठ जाएं और इस स्पिरिचुअल इंजेक्शन को करें। दवाई लेने के लिए बैठना होगा, ठीक है। अब हम चलते सभी ब्रह्मांड की सैर की तरफ, पर उसके पहले फिर बता दें कि कल का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल शिविर के अंदर आनंद उत्सव मनाया जाएगा। चार्ट का पॉइंट है महान कलाकार की स्मृति, महान कलाकार की स्मृति कितनी रही। चलिए अब सभी अपनी आंखें बंद, कॉपी पेन बंद, रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में हम चलेंगे उस परम धाम की यात्रा की तरफ। आज सब तैयार हो जाएं, अपने घर की सैर हम करेंगे। रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। चलिए आज हम अपने घर की सैर करें, अनुभव करें कि एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें हेलीकॉप्टर खड़ा है, आप उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं और धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़े। आहा, ऊपर से ये धरती कितनी सुंदर लग रही है, प्रकृति सौंदर्य को देखें, सागर को देखें, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं, प्रकृति सौंदर्य को निहारें। अब और आगे बढ़ें और पहुंच जाएं आकाश मार्ग में, बादलों के बीच। आहा, इन बादलों के बीच, बादलों की दुनिया में कितनी शांति है। कुछ देर बादलों की दुनिया में रहे, अब और आगे बढ़े और पहुंच जाए चांद के पास। चांद की शीतलता का अनुभव करें, अब और आगे बढ़े और पहुंच जाए सितारों की दुनिया में। आहा, ये एक एक सितारा कितना जगमग रहा है, ये सभी सितारे शांति के सितारे हैं। जिस प्रकार ये सितारे हैं, मैं आत्मा भी इनके ही समान एक प्रकाश पुंज सितारा हूं। आप भी अपने सितारे के स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, चमकते सितारे के समान, यही मेरा सत्य स्वरूप है, प्रकाश पुंज। अब सितारे बनकर, आत्मा बनकर और ऊपर उड़े और पहुंच जाए अपने घर। आहा, एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है, जहां चारों ओर शांति ही शांति है, कोई आवाज नहीं। आहा, मैं आत्मा प्रकाशपुंज इसी शांति के देश की रहने वाली हूं। यही मेरा घर है। आत्मा बिंदु बनकर अपने घर शांति धाम में बैठे रहे, इसी संकल्प में कि मैं आत्मा अपने घर शांति की दुनिया में बैठी हूं। आहा, आज तक मैं आत्मा शांति प्राप्त करने के लिए कहां कहां नहीं भटकी, कहां कहां नहीं खोजा, पर आज मुझे अनुभव हुआ कि शांति साधनों में नहीं है, धन संपत्ति में नहीं है, पर शांति तो मेरा स्वधर्म ही है। शांति तो मुझ आत्मा का स्वरूप ही है। शांति धाम तो मेरा घर ही है और मेरा पिता परमात्मा भी शांति का सागर। तो शांति तो मेरा वर्षा है, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। इसी संकल्प में बैठे कि मैं आत्मा अपने घर शांति धाम में बैठी हूं। चारों ओर कोई आवाज नहीं, डीप साइलेंस, सुनहरा लाल प्रकाश। स्वीट साइलेंस। अब सभी परम धाम से आत्मा बिंदु बनकर धीरे धीरे नीचे उतरे और इस शरीर में भ्रुकुटि सिंहासन पर बैठ जाएं और इस संकल्प के साथ कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक महान कलाकार हूं और आज के दिन का पाठ मैं आरंभ करता हूं। ओम शांति। सभी साइलेंस में ही उठेंगे।